सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज कुछ घटनाओं को, कुछ समाचारों को देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपने एक खबर पढ़ी होगी, बहुत ही प्रोमिनेंटली छपी है और ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। देखिए, संज्ञान क्या होता है? देखिए, सामान्यतया क्या होता है कि हम न्यायालय के पास जाते हैं, अपनी याचिका दायर करते हैं, केस लेकर के जाते हैं और फिर न्यायालय उसकी सुनवाई करती है। यानी कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है। यहां हम प्यासे हैं और न्यायालय कुआं है। लेकिन संज्ञान वह प्रक्रिया है जब कुआं चलकर प्यासे के पास आता है। यानी कि न्यायालय में कोई जाता नहीं है, न्यायालय के पास अपनी बुद्धि है, उसके पास अपनी आंखें हैं, वो देखता है कि समाज में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। और उन स्थितियों को देखने के बाद यदि उसे लगता है कि इससे जो है नागरिकता का हनन हो रहा है, या यूं कह लीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और यहां जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो उसका संबंध मूल अधिकारों से है, तो वह खुद हस्तक्षेप करता है। तो इसे कहते हैं संज्ञान, यानी कि वह खुद फिर उसकी व्यवस्था करने के लिए सामने आता है। अभी न्यायालय ने संज्ञान लिया और खासकर टीकाकरण की स्थिति को लेकर के उसने संज्ञान लिया, और आप देखिए कि सरकार पर उसने कुछ तीखी टिप्पणियां भी की हैं और ढेर सारे जवाब मांगे हैं। चलिए, हम उन जवाबों की चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो न्यायालय ने जवाब मांगे हैं उन प्रश्नों को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन संज्ञान क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, आप समझिए, ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि किस तरीके से वो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामने आता है। तो ऐसे में देखिए, फिर से एक बात आती है कि एक तरफ तो हमारे पास कार्यपालिका है, हमारे सामने सरकार कार्यपालिका का हिस्सा है, जो हमारा संसद है विधायिका का हिस्सा है, और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस तरीके से हमारा सही मायने में रक्षक है। देखिए, आप सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि आप टीकाकरण के बारे में क्या कर रहे हैं, आपकी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है, इनके लिए अलग पॉलिसी है, उनके लिए अलग पॉलिसी है, आपने कह दिया है कि पहले से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, जब आपको नहीं मालूम कि डिजिटल इनइक्वलिटी क्या है, कैसे है, कितनी है, लोगों के पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और बिना रजिस्ट्रेशन के आपको टीका नहीं लगेगा। टीका करना जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कैसे जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो डिजिटल इनइक्वलिटी एक शब्द आया, डिजिटल इनइक्वलिटी यानी कि डिजिटल असमानता। दोस्तों, इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए और इस पर एक छोटा सा नोट तैयार कर लीजिएगा, डिजिटल इनइक्वलिटी, क्योंकि इसकी अब बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं। यानी कि जो अभी टीकाकरण हो रहा है ये केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए है, मध्यम वर्ग और उससे ऊपर के वर्ग के लिए है, बेचारे गांव का गरीब आदमी जिसके पास फ़ोन नहीं है, जो इस तरह की चीज़ों के बारे में जानता नहीं है, वो न तो न रजिस्ट्रेशन करा सकेगा और न ही उसका टीकाकरण हो सकेगा, यानी कि न तो नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी कल सुप्रीम कोर्ट की मित्रों रही है। आइए दूसरी खबरों को देखें कि बकायदे जो हमारा जो जीडीपी है, आपने अखबारों में पढ़ा है, दो दिन पहले इसकी घोषणा हुई थी, आज कुछ अखबारों ने इस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे हैं, मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। जीडीपी हमारा कम हुआ है, संकुचन हुआ है, माइनस पे 7.3% आया है और लग ही रहा था कि जीडीपी कम होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, यहाँ दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि चलिए ठीक है, अभी तो कोरोना के संकट में पूरी दुनिया का ही जीडीपी माइनस में रही है, चाइना को छोड़ करके, खासकर भारत के भी माइनस में है, लेकिन कुछ पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा जा रहा है कि हमारी जो जीडीपी है वो गिरती चली जा रही है, पिछले कम से कम 5 सालों से ये देखने में आ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है कि हमारी जीडीपी लगातार क्यों गिरती चली जा रही है। जो आपको आज एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो कृषि जो क्षेत्र है वो भारत के लिए बहुत संबल प्रदान कर रहा है अभी भी, मतलब कृषि के क्षेत्र में हमारा उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। सरकार ने इसीलिए एक अच्छा कदम यह उठाया कि एमएसपी के तहत, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत, इस बार खाद्यान्नों की खरीदी अपेक्षाकृत ज़्यादा की है, तो किसानों के पास सही कीमत पहुंच गई अनाज की, और जब किसानों के पास पैसा पहुंच गया है तो डेफिनेटली उससे मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। और आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने आपको कई आर्टिकल्स और कुछ एडिटोरियल कमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं जिसमें बार बार जो हमारे विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो सरकार को सलाह दे रहे हैं कि आप मार्केट में डिमांड जनरेट कीजिए, जो रियल डिमांड होती है वो जनरेट कीजिए। तो खासकर कृषि उत्पाद के क्षेत्र में वह डिमांड जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका एक प्रकार से आप कह लीजिए कि स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, कल के अखबारों में एक खबर आई थी, एक दो खबरें, तो चूंकि कल हम लोग एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे तो उसकी चर्चा नहीं हुई। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री की दृष्टि से, मुझे ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। आपको मालूम है कि भारत में भी जो ये वायरस है, कोरोना वायरस है, ये म्यूटेंट कर रहा था, अपना रूप बदल रहा था। बीच में उससे भारतीय वेरिएंट कहा जाने लगा था, जिसको लेकर के हमारी सरकार ने विरोध भी किया कि ये भारतीय वेरिएंट जैसा कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं है, और WHO ने ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, ऐसा लिखना आप बंद करें। अच्छा है कि इसके बाद लिखा भी नहीं गया। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो इस पर कदम उठाया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जब तक उसका नाम अप्रूव्ड नहीं हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ इस आधार पर कि भारत में ये वेरिएंट मिला है। तो अब WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, बकायदे जो भारत में दो तरह के वेरिएंट्स मिले हैं उन्हें नाम दे दिया है। ये नाम आपको याद रहने चाहिए, हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो देखिए, दो तरह के वेरिएंट हैं, बस आखिरी में कहीं जो डिजिट है वो बदला हुआ है। जो पहला वेरिएंट है वो है B, इसके बाद बिंदी लग जाता, बिंदी बिंदी B, बिंदी 1, बिंदी 617, बिंदी 1, आखिरी में 1 है, ठीक है। इसे नाम उन्होंने दिया है कप्पा, कप्पा। और इसके बाद जो दूसरा वेरिएंट है वो भी सेम है, आखिरी में बस बिंदी 2 हो गया है, बी बिंदी 1 बिंदी 617 बिंदी 2, इसे उन्होंने नाम दिया है डेल्टा। यानी कि जो 1 है उसका नाम है कप्पा और जो 2 है उसका नाम है डेल्टा। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो आखिरी में 1 है वह कप्पा और आखिरी में जो 2 है वह डेल्टा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया इस पर तो यहीं आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी कि आपके दिमाग में चीजें कितनी क्लियर हैं वो जान सके। कल के अखबारों में एक और खबर थी और मुझे लगता है कि आपके मेंस की दृष्टि से अच्छी खबर है, और वो है कि दोस्तों, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है, और उसके तहत जो मस्जिदों में सुबह जो अजान की जाती है और अन्य मौकों पर जो लाउड स्पीकर बजाया जाता है उसे बहुत धीमा करने का आदेश दिया है कि नहीं, लाउड स्पीकर पर अजान करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अजान का वक्त होता है, नमाज का जो वक्त होता है, वो तय होता है और उसको शुरू करने के लिए किसी के घोषणा या किसी के बताए जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ एक बार बात आपको और बताना चाहूँगा कि जो सऊदी अरब के जो अभी प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन्हें अपेक्षाकृत इस्लामिक विचारों की दृष्टि से थोड़ा सा उदारवादी माना जा रहा है। यानी कि जो पश्चिमी, आधुनिक कहना चाहिए, पश्चिमी तो नहीं कहना चाहिए, जो आधुनिक जीवन मूल्य हैं या आधुनिक जीवन पद्धति है उसे वो स्वीकार कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए उन्होंने सऊदी अरब में कई ऐसे आदेश जारी किए हैं जिसमें कि ये सब की झलक मिलती है। तो उसके तहत ही यह एक घोषणा है। आप अपने निबंध में या मेंस के आंसर राइटिंग में बकायदे इस तथ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और विशेषकर इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक आर्टिकल है चेतन भगत जी का, टीके में नस्ल भेद मानव जाति पर कलंक है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें खासकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अभी देखिए जो कोरोना फैला हुआ है, इसके बचाव का एकमात्र रास्ता जो दिखाई दे रहा है वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं, ब्रिटेन है या अमेरिका है, इसराइल है, ये सब इसे प्रमाणित भी कर रहे हैं। भारत भी लगा हुआ है, कुछ दूसरे देश कर रहे हैं, लेकिन इसका एक जो बहुत ही स्याह पक्ष है, जो काला पक्ष है, जो चिंतनीय पक्ष है, वो ये है कि जो धनी राष्ट्र हैं या अपेक्षाकृत, जैसे भारत तो चलिए धनी राष्ट्र नहीं है लेकिन उसके पास वैक्सीन उत्पादन की खुद की क्षमता है, तो यहां तो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन जो गरीब देश हैं, जो छोटे देश हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप को ले लीजिए, तो वहां वैक्सीनेशन नहीं के बराबर है, क्योंकि उनको टीका ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो उत्पादन हो रहा है, देखिए कि या तो ब्रिटेन उत्पादन कर रहा है टीके का, या अमेरिका कर रहा है, या भारत कर रहा है, या चाइना कर रहा है, रूस कर रहा है, तो ये अभी उत्पादन करके अपने लिए ही जरूरत की चीज़ें पूरी कर रहे हैं, डिमांड पूरी कर रहे हैं, दूसरों को देने की स्थिति में नहीं है। और अगर देने की स्थिति में है तो महंगे इतने हैं कि गरीब देश उसको बियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखिए, इसी में इसकी शुरुआत जो लेख की है, और इसे आपको नोट भी कर लेना चाहिए कि बकायदे हमारे संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं गुटेरस जी, उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है कि अमीर देश और इलाकों को कम आय वाले देशों की तुलना में 30 गुना तेजी से वैक्सीन मिल रही है। अमीर देशों को, और सोचिए, और 30 गुना ज्यादा वैक्सीन मिल रही है। और आगे उन्होंने लिखा है कि अब तक लगे 75% टीके केवल 10 देशों में लगे हैं, केवल 10 75%, जबकि 200 देश हैं मोटे तौर पर, सोचिए, जबकि 0.3% कम आय वाले राष्ट्रों में गए हैं। बस 0.3% क्या होता है, कम आय वाले राष्ट्र ज्यादा हैं। जबकि ये जो कोरोना है, आप जानते हैं कि ये वैश्विक समस्या है, अगर किसी भी देश में बना रहा तो इसके पूरे की पूरी दुनिया को फिर से अपने लपेटे में ले लेने की पूरी संभावना रहती, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। आखिर वायरस एक छोटा सा ही तो वायरस चीन से निकला था और पूरी की पूरी दुनिया को उसने अपने जज्ब में ले लिया। तो अगर कोई भी देश इससे वंचित रह जाता है तो फिर से पूरी की पूरी दुनिया कोई यातना झेलनी पड़ सकती है। ये बहुत अच्छा लेख है, प्लीज इस पर आप लोग एक नोट तैयार कर लें, पॉइंट वाइज नोट तैयार कर लें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें, यहां तक कि आप दूसरे सब्जेक्ट, आप सोशियोलॉजी का पेपर उठा करके देख लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जनरल स्टडीज के पेपर उठा करके देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के पेपर उठा करके देख लीजिए, तो उसमें बकायदे कहीं तो समाज में असमानता आई है उसके बारे में बात की गई है, कहीं आर्थिक असमानता आई है उसके बारे में बात की गई है, कहीं आप यूं कह लें राजनीतिक अधिकारों में असमानता आई है उसकी बात कही गई है, कहीं महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हो गए इसकी बात कही गई है। इस आर्टिकल में एक तरह से वर्ल्ड इनइक्वलिटी की बात की गई है, वैश्विक असमानता की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है ये मुद्दा अब उठ रहा है, इस पर क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया है, और मुझे लगता है कि ये आपकी मदद करेगा। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आपको एक और आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो एमजे अकबर साहब का है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं एमजे अकबर साहब, इसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आ गए। स्वास्थ्य और शिक्षा को मिले प्राथमिकता, भारत का सबसे बड़ा संकट ये है कि ये दोनों जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं समाज के या किसी भी राष्ट्र के, व्यक्ति के विकास के, आर्थिक विकास के, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जीडीपी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा इन दोनों में खर्च किया जा रहा है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो ऑलरेडी इतने उन्नत हो चुके हैं, अपने जीडीपी का भारत की तुलना में कई गुना ज़्यादा खर्च इन दोनों क्षेत्रों में करते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और इस पर भी आपको एक छोटा नोट तैयार कर लेना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में अलग से और शिक्षा के बारे में अलग से। तो दोस्तों, आज चूंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ दूसरी बातें थी, तो मैं आज मुख्य विषय के तहत जो हम लोग प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पर बातें कर रहे हैं उस पर बात नहीं कर सका हूं, लेकिन आप लोगों के जो उत्तर मिले हैं, ईमानदारी के साथ कहता हूं कि उन्हें पढ़कर मैं मन से आह्लादित हूं। ये शब्द आप पहली बार मेरे मन से सुन रहे होंगे, मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, मेरी आत्मा से सुन रहे होंगे, आह्लादित। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विकास कुमार, सतीश संत और निखिल बुल्ढाना महाराष्ट्र से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।